روحانی پالنا یہ پروجیکٹ دیا تھا، نیشنل لیول کا پروجیکٹ تھا، لیکن ممبئی نے اس کو وشیش روپ سے اس پروجیکٹ کو اٹھایا ہے، اس لیے روحانی پالنا پروجیکٹ کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ ورکنگ رپورٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہیں پر اسی منچ پر بیٹھ کر کے کچھ تیاری کی تھی، بڑے بہنوں کے گائیڈنس انوسار کچھ سکشم تیاریاں پہلے ہوئی تھی۔ سکشم تیاریوں کے سکشم پالنا کیسے دیا جا سکتا ہے یہ ہم کو سیکھنے کو ملا اسی منچ سے، جیسے کہ روز امرت ویلے سے پہلے ہم اچھے اچھے سنکلپ کریں سبھی براہمن پریوار کے پرتی کہ نروگن ہو رہا ہے میرا یہ براہمن پریوار، اور بہت اچھا سنکلپ ملا، ہر ایک براہمن کا بھنڈارا بھرپور ہو رہا ہے اپنے لوک پریوار کا، کیونکہ کیا سینٹروں کے لیے تو ہم شبھ سنکلپ کرتے ہیں، لیکن براہمن پریوار کے جیون کے پرتی بھی ایسے سنکلپ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کر کے یہیں پہ محسوس ہوا اسی منچ پر۔ اس کے بعد یہ ویکتیگت پرشارتھ کی بات ہو گئی ہے، اس طرح سے روحانی پالنا دینے کا پریاس اوروں نے بھی کیا ہوگا، رپورٹ آیا نہیں ہے، لیکن ویکتیگت روپ میں کئی لوگوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ سنگٹھت روپ میں کیا ہوا ہے یہ تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ ممبئی میں سینئر کماروں کا ایک الگ سے گروپ بنایا، اس میں 50-60 لوگ رجسٹر ہو گئے اس گروپ میں، جو سینئر کمار تھا 20 ورش سے ادھک۔ پھر اس گروپ کا بٹی ہوا، ابھی تک ایک بٹی ہوا، ابھی سیکنڈ بٹی ہونے جا رہا ہے، پرسوں سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ گروپ اپنی پالنا خود کر رہا ہے، اس گروپ کے کوآرڈینیٹرز بھی بنائے گئے ہیں۔ پھر G10 گروپ بنا، منا 10 ورش سے ادھک جو گیان میں چل رہا ہے ان کا ایک الگ گروپ بنا، اور ان کا ایک الگ گروپ کوآرڈینیٹرز بنے، اور ان کی بھٹیاں الگ سے چلتی ہیں، اور وہ اپنی پالنا خود کر رہے ہیں الگ الگ ودھی سے، واٹس ایپ کے دوارا کچھ نہ کچھ دینا، لین دین کرنا، ایسے انوبھوں کا لین دین وغیرہ۔ اور کماریوں کا بھی الگ گروپ بنا ہے، اور ان کی بھی پالنا اپنی اپنی کوآرڈینیٹرز اپنی اپنی گروپ کا کر رہے ہیں۔ اس طرح سے روحانی پالنا کا یہ براہمن پریوار کے لیے بنا ہے۔ اس کے علاوہ نان بی کیس کی پالنا کرنا، اس کے لیے بھی ہماری بامبے کی نیلیما بہن جی یہاں اس سمے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا پروجیکٹ بنایا لیٹر ٹو گاڈ۔ نان بی کیس کی پالنا مطلب روحانی پالنا، ان کی آتما کو سشکت بنانے کا ایک ودھی، بہت اچھا پروجیکٹ انہوں نے لیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو سننے کا موقع ملے گا ڈیٹیل میں۔ لیٹر ٹو گاڈ، ہر ایک سے لیٹر لکھوانے کا پروجیکٹ چلا، وہ 120 دن کا وہ پروجیکٹ تھا، سب لوگوں نے اس فارم بھر کر کے لیٹر لکھا، روز لیٹر لکھتے تھے گاڈ کو، یہ بھی ایک بہت اچھا ودھی تھا روحانی پالنا کا۔ یہی چھوٹا سا رپورٹ ہے، اوم شانتی، تھینک یو۔
آگے کے لیے ایک چھوٹی سی سوچنا یہ ہے کہ جب ٹائم پورا ہوگا تو میں آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، آپ ایک منٹ میں اس چیز کو پورا کرنے کی کرپا کریں، ٹھیک ہے؟ اب میں نیمنترن دیتا ہوں سنجیت بھائی بینگلور سے، سائنٹسٹ ہیں اور بہت اچھا سوچ اور وچار ساگر منتھن کرتے ہیں۔
اوم شانتی، ہمارا بینگلور کا جو لوکل چیپٹر ہے یہ ون آف دا اولڈیسٹ لوکل چیپٹرز، یہ 1996 چل رہا ہے، تو اسپارک میں اب تک جتنے پروجیکٹ چلے ہیں لگ بھگ سبھی پروجیکٹ میں بینگلور لوکل چیپٹر کا پارٹیسپیشن رہا ہے، اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں ابھی اسپارک کے چیئرمین جو ہے چیئرپرسن وہ بھی بینگلور سے ہی ہے، اور بینگلور جیسے جس کو کہتے ہیں آئی ٹی کیپیٹل آف انڈیا، تو اس لیے اسپارک کا بہت سارا کام کرنے کا اسکوپ بھی ہے، کیونکہ سمے کی کمی کے کارن میں تھوڑا شارٹ میں ہی کور کر رہا ہوں۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے الگ الگ فیلڈ میں راجیو گلاب کی بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں، چاہے کرمیوگ اور کرم بھوگ اور پاور آف تھاٹ، بابا سے سرو سمبندھ کی، جسے جو رپورٹس آپ کو بھی بہت سارے مل جائیں گے اسپارک کے کاؤنٹر میں، جو اس فیلڈ پر بینگلور لوکل چیپٹر میں ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ بچوں کے لیے ویلیو ایجوکیشن پروجیکٹ پہ اسمائل ورلڈ ایک پروجیکٹ کیے تھے، بہت اچھا ریسپانس ملا ہے 9-14 ایئرس بچوں کے لیے، اور کدوئی ہاسپٹل میں کینسر پیشنٹس کے اوپر ہم نے بہت اچھا پروجیکٹ کیا ہے راجیو کے اوپر، اور ہیلتھ کا دوسرا بھی پروجیکٹ ایک रिसर्च के थीसिस में के रूप में सबमिट हुआ है, एक रजनीकांत भाई है उनके द्वारा। तो ऐसे हेल्थ की प्रोजेक्ट्स पे भी हम लोग करते हैं, और एक हम स्पार्क में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स बैंगलोर में किए हैं, और बार बार कोर ग्रुप मीटिंग्स बहुत समय से भी बैंगलोर में होता आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि बैंगलोर में लगभग 200 स्पार्कलर्स है, मीटिंग में 60-70 भाई बहने आते हैं। हर मंथ हमारा मीटिंग होता है, एक सेंट्रल मीटिंग, उसके अलावा भी बहुत जगह पर लोकल सेंटर लेवल पर बहुत मीटिंग्स होते रहते हैं, जिसके जो स्पार्क की जो प्रोजेक्ट है उसका एक्सपेरिमेंटेशन होता रहता है। तो हम बैंगलोर मधुबन में जितने सारे प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं उस सभी पर काम करते हैं, और हम लोकल लेवल पर भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे मृत्यु से वायुमंडल परिवर्तन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और शुद्ध भोजन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और कोर ग्रुप हमारा स्पार्क का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए और डिफरेंट मीटिंग कॉन्फ्रेंस की एजेंडा फाइनल के लिए भी कोर ग्रुप काम कर रहे हैं। कुछ ज्यादा भी नहीं था, तो मैं तो सभी पढ़ के भी सुना दिया जस्ट मेरे राउंडअप के लिए। और फ्यूचर में हम एक स्पार्क का चेयरमैन की जो ऑफिस है वो ऑपरेशनलाइजेशन करेंगे, जिसके आधार से स्पार्क की कारोबार अच्छी तरह से हो पाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। और कोर ग्रुप का मीटिंग थोड़ा पीरियडिकली करेंगे, और पीरियडिकल रिव्यू भी करेंगे कोर ग्रुप का जो एक्टिविटीज, सो दैट स्पार्क का थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। एंड प्लानिंग भी करेंगे, और जो भी प्रोजेक्ट्स है उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली करेंगे, और उसको एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग भी अच्छी तरह से आगे करने का प्लान है। ओम शांति।
ओम शांति। कहते हैं समझदार को एक इशारा ही काफी होता है, मुझे खड़े होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा है, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। आप सबसे निवेदन ये है कि हम लोग घर पे जाके अगर स्पार्क का लोकल चैप्टर है तो क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहां इनको पूरा अवकाश नहीं मिला है, लेकिन इन सबके चेहरे आपको मालूम है। आप उनसे मिलकर व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे, वे बड़े आसानी से आपको सारी की सारी जानकारी के चैप्टर में हम क्या कर सकते हैं, इस आपने जो जो प्रोजेक्ट किए उसमें से अगर कोई अडॉप्ट करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए इनपुट है। मैंने जैसे कहा ना कि जो अच्छा सुनता है वो अच्छा बोलता भी है, और फिर बाद में जो बोलता है वो करता भी है। तो इस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है। तीसरा मैं निमंत्रण देता हूं हमारी आदरणीय दुर्गेश बहन को, भुवनेश्वर से हैं। इन्होंने भी बहुत सारे पुरुषार्थ किए हैं और बिल्कुल रेगुलर रूप से यहां पे स्पार्क के पार्टिसिपेंट रही हैं, आदरणीय दुर्गेश बहन।
ओम शांति। करावन हार बाप दादा और रमेश भाई जी की ब्लेसिंग्स और उनके आदर्श से प्रेरणा लेकर अंबिका बहन जी और श्रीकांत भाई, संजय भाई, इन सब की संपूर्ण सहयोग से लास्ट ईयर हम ये दुआ दो और दुआ लो उस प्रोजेक्ट पर बहुत उत्साहित होकर के भाई बहने उस पर काम किए। और इसके अलावा उड़ीसा में एक 10 दिन का स्पार्क की सारी फैकल्टीज, चेयरपर्सन अंबिका दीदी और श्रीकांत भाई, नीलिमा बहन फ्रॉम चेन्नई, बालाकिशोर भाई फ्रॉम हैदराबाद, छाया बहन फ्रॉम बेंगलोर, वो सब आकर उड़ीसा के धरनी में पहुंचे, ताकि 15 तारीख से 24 तारीख तक हम सब की स्वोन्नति और कुछ सेवाएं भी जारी रही। जैसे कि इन सब की उपस्थिति में 15 तारीख को कटक के एक रिट्रीट सेंटर है विश्व शांति सरोवर में, वहां ट्रेनिंग एंड एनुअल मीटिंग ऑफ स्पार्कलर्स, उड़ीसा की सभी स्पार्कलर्स वहां इकट्ठे होकर मीटिंग रहा। 16 दिसंबर को उड़ीसा की सभी सीनियर भाई बहनों की मनमना भव शीर्षक भट्टी उस परिसर में ही रहा, और 17 तारीख को विशेष रिसर्चर्स एंड मोस्टली ऑल इंटेलेक्चुअल ग्रुप के लिए उसी परिसर में कटक के रिट्रीट सेंटर में इनर रेजिलियंस टू आउटर एजिलिटी उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रहा। इसके अलावा ये ग्रुप बाला भाई एंड श्रीकांत भाई विथ दुर्गेश बहन वी वेंट टू राउरकेला की भाई बहनों के लिए वहाँ एक रिट्रीट ऑन संस्कार परिवर्तन भाई बहनों के लिए एक अर्ध दिवसीय 18 तारीख दिन में वो कार्यक्रम रहा और 18 तारीख शाम को एनआईटी राउरकेला में ट्रेन द माइंड एंड चेंज द ब्रेन उस टॉपिक पर बाला भाई का टॉक रहा और स्पार्क की जानकारी भी वहां श्रीकांत भाई जी दिए। और 19 तारीख कटक में सारी सीनियर एंड जूनियर ऑल सिस्टर्स की वहां भर्ती रहा। 20 तारीख को भुवनेश्वर के भाई बहनों के लिए इन भाई बहनों की उपस्थिति में वहां भी बीकेएस की रिट्रीट रहा। 21 तारीख को बालेश्वर की भाई बहनों के लिए सवेरे मेडिटेशन रिट्रीट रहा और दोपहर को वहां डीआरडीओ की एक आईटीआर और एक पीएक्सी जहां जिनकी डायरेक्टर्स आईटीआर की डायरेक्टर्स दो बार यहां स्पार्क मीटिंग में आने के लिए आमंत्रित थे और स्वीकृति भी दिए थे लेकिन आ नहीं पाए थे। वो तो उत्सुक थे लेकिन वहां कुछ प्रोग्राम रहा इसीलिए डीआरडीओ पीएक्सी प्रूफ एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिशमेंट उसी कैंपस में उनकी डायरेक्टर जिनके लिए वहां की बहन की ये चिंता थी कि वहां वो ऐसे कोई स्पिरिचुअल कार्यक्रम करने नहीं देते हैं लेकिन वहां डायरेक्टर डॉक्टर अपूर्वम की उपस्थिति में यही ट्रेन द माइंड एंड चेंज द ब्रेन पर उस डीआरडीओ की पीएक्सी कैंपस में सभी साइंटिस्ट रिसर्चर्स एंड उनके एम्प्लॉयज डायरेक्टर की उपस्थिति में ये कार्यक्रम रहा। उसके बाद 24 तारीख को भुवनेश्वर के यूनिटेट की सेवा केंद्र में इंटेलेक्चुअल्स डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स इनकी उपस्थिति में हमारी एक कार्यक्रम रहा होल्डिंग द रेन्स ऑफ द माइंड। ये कार्यक्रम आफ्टरनून में रहा। उससे पहले सवेरे फिर बीकेएस के लाइफस्टाइल के ऊपर एक कार्यक्रम बाला भाई उसके ऊपर प्रकाश डाले। इन सभी स्थानों के कार्यक्रम के अलावा कटक के एक बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज एसजीबी मेडिकल कॉलेज और भुवनेश्वर की आईएमएस एंड सॉम मेडिकल कॉलेज एंड इन सम मैनेजमेंट कॉलेजेस में विशेष तौर पर ये अटेंशन इंटेंशन एंड मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट पर उनको स्पार्क की जानकारी देने के साथ उन स्टूडेंट्स रिसर्चर्स और फैकल्टीज की उपस्थिति में भी उनको प्रकाश डाला गया। इन सब के साथ मैं शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।
बाबा ने हम सबको दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने हम सबको सब कुछ सफल करने को बोला है। ऐसे जब प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हमें अपने संबंध संपर्कों को सफल करने की बात आती है। कहीं संबंध है, आप सब भी अपने दिमाग में एक स्कैनर घुमाइए, मेरा कहाँ संबंध है, मेरा कहाँ संपर्क है, उस संपर्क को इस ज्ञान के साथ मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, ये भी इन उदाहरणों में से मिलता है। मैं अब निमंत्रण देता हूँ बीके अविनाश जी को, दिल्ली से हैं और स्पार्क में बहुत ही अच्छी और गहनतापूर्वक सेवाएं दे रहे हैं। बीके अविनाश भाई।
ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के सभी भाई बहनों ने पिछले साल लगभग सभी ने मन जीते जगत जीत पे पुरुषार्थ किया और उसकी रिपोर्ट आपको यहां मिली गई थी। हम जो है आपको दिल्ली में जो कुछ सेवाएं हुई हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। स्टेज की लाइट ऑफ हो सकती है। दिल्ली में हमने पिछले साल सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम हुआ वो एक स्पिरिचुअल गेट टूगेदर हुआ। दिसंबर 2016 में हमने सर कॉन्फ्रेंस की थी तो सभी भाई बहनों का यह संकल्प था कि कॉन्फ्रेंस के बाद नॉन बीके भाई बहने जो संपर्क में आए थे उनकी दोबारा से सेवा करनी चाहिए। तो उसके लिए सेंटर पे ही लगभग 50-60 भाई बहनों को हमने उनको दोबारा निमंत्रण दिया कि आप आए हमारा सेंटर देखें और एक छोटा सा वर्कशॉप का भी प्रोग्राम हमने वहां पर रखा तो उससे बहुत अच्छा हुआ, उनको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मेरे ख्याल से 30 से 40 लोगों ने राजयोगा मेडिटेशन जो 7 डेज का कोर्स है हमारा वो भी किया। कहने का भाव ये है कि जब भी हम सेवा करते हैं तो उसके बाद हम उनको ऐसे ही ना छोड़ दें, आगे हमें उनको पालना देने के लिए छोटे छोटे वर्कशॉप्स अगर हम करेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद हमने अपने बीके भाई बहनों के लिए ओआरसी में ही में एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंशियल रिट्रीट रखी, जिसका थीम साइलेंस पे था। ये दो दिन की हमने भट्टी रखी थी, जिसमें लगभग करीब 500 भाइयों बहनों ने दिल्ली और एनसीआर के सभी ने पार्टिसिपेट किया। बड़ा रिट्रीट रखने का लक्ष्य यह था कि पूरे दिल्ली में या पूरे दिल्ली एनसीआर में इसका मैसेज फैले, सभी को स्पार्क का अवेयरनेस हो। इसकी कुछ फोटोज होंगे, वो शेयर करेंगे। एक स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन एक स्पार्क के द्वारा इनिशिएटिव है, जो कि स्कूल्स कॉलेजेस में हम साइंस के द्वारा राजयोगा मेडिटेशन के बारे में बता सकते हैं। आप में से कई भाई बहनों को उसके बारे में पता होगा। इसकी एक ट्रेनिंग हमने दिल्ली में ही रखी, जिसमें करीब 40 बीके फैकल्टीज ने इसका फायदा लिया, उसको समझा, उसको हम कैसे स्कूल कॉलेजेस में कॉन्टेक्ट करके उस एग्जीबिशन को दिखा के कैसे बाबा का ज्ञान उनको हम दे सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा स्पार्क का टूल है, जो इस मीटिंग में नहीं रखा गया, बट जो नए भाई बहने हैं उनके लिए ये अच्छा हो सकता है। ये उसकी कुछ फोटोज हैं। श्रीकांत भाई जी हमें बार बार इंस्पायर करते हैं कि आप सभी बीके भाई बहने आपस में जरूर मिला करें। हम पूछते थे कि भाई जी कुछ उद्देश्य होना चाहिए, भाई जी ने कहा कि नहीं आप मिला करें, उद्देश्य और प्लान्स अपने आप निकल जाएंगे। तो हमने देखा, हमने करीब 3 क्लोज एसोसिएशन में करीब 15-20 भाई बहने आपस में मिले और आपस में संकल्प शेयर करें, तो एक बहुत अच्छे सेवा के प्लान्स और बहुत अच्छे स्व पुरुषार्थ के प्लान्स निकले, तो इसका बड़ा हमें फायदा हुआ। कहने का भाव यह है कि हम मिलें, आपस में मिलेंगे, संकल्प शेयर होंगे और नई हमारी विचारधाराएं खुलेंगी, उससे हम अपना पुरुषार्थ तो कर ही सकते हैं और सेवा के नए नए प्लान्स भी बना सकते हैं। अभी करंटली दिल्ली में 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनके मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं। इफेक्ट ऑफ राजयोगा ऑन स्पाइनल इंजरी पेशेंट्स, एक ISC हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, उनके साथ कोलेब्रेशन करके हम ये रिसर्च प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिससे स्पाइनल इंजरी पे के पेशेंट्स पे राजयोगा का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रोजेक्ट NIC नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में कुछ यूथ छोटे बच्चे आते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनके ऊपर क्या राजयोगा का प्रभाव पड़ता है उस पर भी स्टडी चल रही है। तीसरा एक स्पिरिचुअल स्केल हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हैप्पीनेस स्केल के बारे में सुना होगा, पर्सनैलिटी स्केल के बारे में सुना होगा, तो एक ऐसा ही स्पिरिचुअल स्केल तैयार हो, इसके लिए हम DIPR DRDO के साथ कोलैबोरेट करके एक स्केल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू।
अब मैं निमंत्रण देता हूं। देखिए, ये जो एक्टिविटीज बता रहे हैं ना, वो हम लोग अपने तई केवल बाहर की सेवा के लिए ही है, ऐसा नहीं है। जैसे साइलेंस की भट्टी की मान लो, तो हम अपने भाई बहनों के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स अवश्य नोट कर लें, जैसे हम जाके कुछ कर सकें। अब मैं निमंत्रण देता हूं धुलिया के गणपत भाई को, वे उनके यहाँ की हुई एक्टिविटीज का हमें थोड़ी सी झलक बताएंगे।
ओम शांति। शरीर का नाम है गणपत भाई, मैं धुड़े अशोकनगर सेंटर से बिलीव करता हूं। पिछले साल स्पार्क प्रोग्राम का मेरा पहला ही वक्त चांस था और उस समय में एक प्रोजेक्ट हुआ था, दुआएं लो दो दुआएं लो। इस प्रोजेक्ट को लेकर के हम सेंटर में गए, इसकी जानकारी हमने सेंटर के हमारे और भाइयों को दिया और हमने एक टीम तैयार किया। टीम तैयार करने के बाद दीदी ने एडवाइस किया कि अपने को ऐसी जगह से दुआएं जमा करनी है, दुआएं भी आपको मिलेगी और साथ साथ बाबा का परिचय भी दिया जाएगा। हमने बहुत जगह ऐसी सोची जहां कहां हम ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पूरा प्लेन पेपर हो, उस प्लेन पेपर के हम बाबा का नाम लिख सके। मैं एक सर्विसमैन हूं, मैंने सजेस्ट किया कि अपन जेल में जाएंगे, जेल में जो कैदी है कैदियों को बाबा का परिचय देंगे। और धुड़े के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, धुड़े के जेल सुप्रिंटेंडेंट साहब दीदी के साथ उनके साथ गए, ब्रह्म कुमारी का परिचय दिया। योगा योग ऐसा हो गया कि जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उनके कोई दूर के रिश्तेदार हमारी संस्था से जुड़े थे, इसलिए हमें समझाने के लिए उन्हें बहुत आसान हो गया और हमारी एक ही जो मुलाकात थी उसमें उन्होंने मंजूर कर लिया कि ठीक है मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछ के या उनसे बात करके आपको इसके बारे में अनुमति दिला दूंगा। और दो दिन के बाद हमको गुड न्यूज मिल गई कि आप सुबह 8:30 बजे से 8:30 बजे तक कई लोगों का नाश्ता होता है, उसके बाद 8:30 से 9:30 ज्यादा 10 के बीच में अपना जो भी कार्यक्रम है उसको निपटा लीजिए। इतना ध्यान रखिए कि आपको मोबाइल अंदर ले जाना नहीं देंगे, ना ही कोई ऐसी चीज जो आपत्तिजनक हो, और ना ही आप किसी प्रसार माध्यम को ये बात बताएंगे ताकि और लोग भी जो है यहां भीड़ करेंगे बताने के लिए। हमने उनकी सारी शर्त मान ली क्योंकि हमको बाबा का परिचय देना था और दुआएं इकट्ठे करना था, दुआएं देना था, दुआएं लेना था। हमने अपने 6 भाइयों की 3 भाइयों की टीम और 3 माताएं की टीम गठित किया। उसमें जो महिला कैदी थी, महिला कैदियों के लिए हमारी माताएं जाती हैं और पुरुष कैदियों के लिए हमारे भाई जाते हैं। उसमें 2 दिन में मुझे भी चांस मिलता है। हमारे सेशन के दौरान, मतलब हमारे जो वहां पे 1 घंटा हमको जो दिया जाता है, उस दौरान में वहां पे कैदियों को इकट्ठा करके और कैदियों को हमारे, पहले स्टार्टिंग में हमारे दीदी ने जो है, जैसा 7 डेज कोर्स तो उन्होंने किया होता नहीं है, उनको पता ही नहीं है प्रताप, क्योंकि वो लोग जो है एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी है, उनको कुछ भी पता नहीं है। किसी कोई कोई को तो हम जब समझाते हैं तो वो नीचे मुंडी डाल के कुछ और ही करता, नखून को उतरता रहता, कोई कुछ करता रहता है ऐसा, मतलब उनको जैसा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी हमारे दीदी ने करीब 1 महीना कंटिन्यूस जाकर के प्रदर्शनी के पोस्टर्स और एक छोटा लाइट का, बाबा का लाइट, छोटा सा लाइट, क्योंकि ज्यादा उन्होंने अलाउ नहीं किया था, और बाबा के गाने का जो एक ट्रांजिस्टर है छोटा, उसको परमिशन लेकर के जेल के अंदर हमने अलाउ करवाया। और ये सुना सुना कर एक महीने से मतलब उनको बता करके उनको जैसे 7 डेज कोर्स तक के ला करके उनको तैयार कर दिया, बाबा का परिचय दिला दिया। उसके बाद हम रोज मुरली लेकर के जाते हैं, मुरली उनको ऐसे समझाते हैं जैसे आप, जैसे दीदी हमें समझाती है, वो तरीका अलग है, उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है, कुछ टपोरी भाषा का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, तब जाके वो समझते हैं। इस तरह से उनको समझा के हमने मार्च 2017 के बाद से हमने ये चालू किया था। 1 महीना हमारा उनका मेडिटेशन में दीदी ने लिया, उनको बाबा का परिचय देने के लिए। कुछ कैदी ऐसे होते हैं, कुछ कच्चे कैदी होती है, उनकी जमानत हो जाती है, वो चले जाते हैं, लेकिन कुछ पक्के कैदी होते हैं जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वहां पर, तो वो पक्के कैदी वो कंटिन्यू रहते हैं उसमें 18 साल से ऊपर, और कम से करीब 70 साल से बीच वाले कैदी वहां पे है। जो पक्के कैदी है उनकी संख्या करीब करीब 30 से 35 है, जिनको आजीवन कारावास हुआ हो किसी भी केस में। और जो कच्चे कैदी होते हैं जिनको 1-2 महीना होता है, वो लगातार हमारे कोर्स में आते हैं। उनको हमारा जो मुरली का ज्ञान, गीता का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, बाबा का परिचय इतना अच्छा लगा। कुछ कैदी हमके, अगर हम एक दिन हमारा कोई भाई, जैसे हमारे 3 भाइयों का है, 2-2 दिन ठहरे हुए हैं, संडे को रेस्ट और गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन नहीं जाना है, तो अगर कोई भाई अगर किसी काम से हमारा भाई नहीं जा पाया, तो कैदी दूसरे दिन अगर जो आदमी भाई जाता है उसको बोलते भाई जी, तो आपके भाई तो कल कोई आया ही नहीं, हमको पता ही नहीं चला कल क्या था। उसको 2 मुरली बताना पड़ता है, कल क्या हो गया, कल बाबा ने क्या बोला था वो भी बताना है, और आज बाबा ने क्या बोला वो भी बताना है। इतना उनको इंटरेस्ट जाग गया, इतना अच्छा हो गया। प्लेन पेपर था वो, बिल्कुल प्लेन पेपर था, प्लेन पेपर के हमने बोल दिया मेरा बाबा। और आप, मैं ये मानता हूं कि आज जैसे बाबा ने बोला है कि लाइन लगेगी या जो भी आपका महत्व बढ़ेगा, मैं जाता हूं तो मैं जब जाता हूं, अंदर एक छोटी पाठशाला है, उसके अंदर करीब 50-60 आदमी बैठने की जगह है। जेल के अंदर ये लोग अपने अपने सेल में होते हैं, एक कांस्टेबल लेके जाता है मेरे को पाठशाला तक, मेरे साथ में होता है। बाद में वहां दूसरा एक कांस्टेबल है, वो कैदियों को सेल में से लाने के लिए जाता है, तो एक एक सेल के ताले खोलता है, एक एक सेल के अंदर 5-5, 6-6 कैदी लोग होते हैं। वो जब आते हैं तो मुझे साइड में खड़ा रहना पड़ता है वो आने तक। तो हर कैदी मुझे ओम शांति बोलता है, हर कैदी मुझे ओम शांति बोलता है। कोई बोलता है गुरु जी ओम शांति, कोई बोलता है भाई जी ओम शांति, कोई बोलता है साहेब ओम शांति, अलग अलग नाम से मुझे, इतने उनके मुंह के अंदर अगर हम व्हाइट ड्रेस वाले मिल जाते हैं ओम शांति बोलते हैं। और बाद में हमने किसी से पूछा भाई इससे आपको क्या, बोले हमारे को इतना अच्छा लगता है कि हम भूल गए कि हमने जो किया था, क्योंकि हमने उनको बताया कि आपने जो गुनाह किया है ये गुने की सजा आप पिछले बार नहीं पाए थे इसलिए अभी मिला है और आप उसी को मत रटते जाओ, जो आपने गलत किया है उसको मत सोचो। अभी जो आपको जो अच्छा जो करना है, जो समाज आपकी जो बाहर राह देख रहा है उसके बारे में सोचो और बाबा को जो ज्ञान जो आपको हम दे रहे हैं उसके बारे में सोचो। ओम शांति,
ओम शांति। जेलों की सेवाएं अहमदाबाद, नड़ियाद, ये धुलिया जैसे बोला, हर जगह पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे परिणाम मिलते हैं कि आप 3 महीने पहले क्यों नहीं मिले, आप मिले होते तो हम यहाँ नहीं होते। ऐसे ऐसे मेरे खुद के भी अनुभव हैं। भाई जी को खूब खूब धन्यवाद, उन्होंने अपनी बात पेश की। अब मैं बुलाता हूँ पुणे के श्री राकेश भाई को। बीके राकेश भाई, प्लीज कम।
ओम शांति। इस पिछले साल स्पार्क की जो गतिविधियां पुणे लोकल चैप्टर्स में हुई है तो उसका थोड़ा समाचार मैं आपको यहां बताने आया हूं। तो पुणे में लगभग 15 से अधिक लोकल चैप्टर्स है और हर साल लगभग 1 या 2 लोकल चैप्टर खुलते रहते हैं और पुणे के आसपास भी बहुत सारे सेवा केंद्र है तो उनकी भी डिमांड होती है कि ऐसे लोकल चैप्टर्स खोले जाए। तो उसमें विशेष हमने पिछले 3 मास में 2 अनुभूति भट्टियां की और उस अनुभूति भट्टियों में विशेष स्पार्कलर्स आते हैं, लगभग 150 के संख्या में, 200 के संख्या में होते हैं और उसमें विशेष एक थीम ली जाती है। तो एक जो पहली अनुभूति भट्टी हुई थी उसमें हमने पावर ऑफ साइलेंस के ऊपर भट्टी की थी और बहुत सुंदर वो अलग अलग रीति से पावर ऑफ साइलेंस का हम कैसे यूज करें, तो क्रिएटिव मेडिटेशन उस प्रकार से हमने किए थे उसमें। और अभी जो आगे भी हम इस साल बहुत सारी भट्टियां करने जा रहे हैं। दूसरा एक सुंदर समाचार है कि पुणे में जैसे नेशनल लेवल पे हमारा यहाँ पे हेडक्वार्टर में सर कॉन्फ्रेंस होते हैं, वैसे पुणे में हमने इस साल सेकंड सर कॉन्फ्रेंस किया। फर्स्ट सर कॉन्फ्रेंस हमने 2 साल पहले किया था और इस सर कॉन्फ्रेंस में हमने विशेष जो 150 के करीब रिसर्चर्स या साइंटिस्ट उसमें सम्मिलित थे और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा और उसमें विशेष महाराष्ट्र के जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है उनकी एक एपेक्स बॉडी है जो वो पूरे यूनिवर्सिटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो कारोबार होती है और उसमें विशेष रिसर्च जो चलता है यूनिवर्सिटीज में, तो उस यूनिवर्सिटीज के रिसर्च की एक एपेक्स बॉडी वहां पे काम करती है और उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर राम खर्चे, वो अभी बाबा के बच्चे भी बने हैं और रूरल विंग में बहुत अच्छी सेवाएं अपनी देते हैं, तो उनको विशेष निमंत्रण दिया गया था एज अ चीफ गेस्ट के रूप में और उन्होंने भी विशेष निमंत्रण दिया कि जो रिसर्च ग्रुप्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे वर्कशॉप कराए जाए। जो रिसर्चर सारे वहां पहुंच नहीं पाते, जो कॉन्फ्रेंसेस होती है तो उसमें वो पहुंच नहीं पाते तो विशेष वो उन्हीं के सामने हम जाके ऐसे कुछ 2 घंटे के या 4 घंटे के ऐसे वर्कशॉप्स अगर करते हैं तो उनको वो इफेक्टिवनेस उसका समझ में आता है। तो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को हो, पावर ऑफ साइलेंस को हो, जो रिसर्चर्स के लिए बहुत जरूरी होता है तो वो स्पार्क के थ्रू हम कर रहे हैं और उसी के लक्ष्य में हमने कुछ अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस पुणे में है, लगभग नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस 25+ है तो उनको धीरे धीरे हम अभी टारगेट करते जाएंगे और उसके लिए हमने कुछ रिसर्च टॉपिक्स या स्पार्क के हमने टॉपिक्स तैयार किए हैं और कुछ और हो रहे हैं जो उनके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। दूसरा यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि सेकंड सर कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी पुणे में राहटनी सेंटर में तो वहां पे विशेष मधुबन से श्रीकांत भाई जी भी आए थे और उनकी विशेष मुलाकात डॉक्टर विजय भटकर जी से कराई गई। उनके घर में श्रीकांत भाई को निमंत्रण था और जब उनसे मिलना था तो लगभग आधा घंटा या 1 घंटे की वो मुलाकात थी लेकिन वो एक्सटेंड होके 2 घंटे तक चली वो मीटिंग और उन्होंने एक विशेष अपनी मनीषा जाहिर की कि ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया जाए इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में मधुबन में कि जो संसार के या कहो इंडिया के जो रिसर्चर्स है, टॉप रिसर्चर्स जो है, साइंटिस्ट है, वो यहां पे पहुंचे। तो हमारा तो सर कॉन्फ्रेंस तो होता ही है, लेकिन वहां सब नहीं पहुंच पाते, या विशेष हम जिनको निमंत्रण देते या जो लोकल चैप्टर्स है वो जब निमंत्रण देते तो उनके संपर्क में जो होते वही आते हैं। लेकिन अभी डॉक्टर विजय जी भटकर वो खुद निमंत्रण देना चाहते इन सभी रिसर्चर्स को। तो आपको मालूम होगा डॉक्टर विजय भटकर इनका ब्रेन चाइल्ड है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जिसको परम 10,000 कहा जाता है, जो 95-96 में फास्टेस्ट एवर इन द वर्ल्ड था। और अभी एक नया सुपर कंप्यूटर इंडिया बना रहा है जो अगले 10 साल में मैन्युफैक्चर हो जाएगा, और वो जब बनेगा तो संसार का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर रहेगा। तो उसकी भी जिम्मेदारी डॉक्टर विजय जी भटकर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप जानते भी होंगे, सीडैक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनका ब्रेन चाइल्ड है। तो उसके वो चेयरपर्सन पहले रह चुके हैं, और मधुबन में बहुत बार लगभग 2 या 3 बार वो सर कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन के रूप में या चीफ गेस्ट के रूप में आ चुके हैं। और विशेष बाबा ने, बाबा से भी उनको मिलाया गया था जब पहली बार आए थे, तो बाबा ने उनको विशेष एक वरदान दिया था कि आप साइंस और साइलेंस इन दोनों का बैलेंस रखना है। तो आप जब भी जहां कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, उनको जहां स्पीच देना होता है या कोई बड़ा काम करना होता है, तो वो विशेष अपना मौन का 3 दिन मौन का वो अभ्यास करते हैं, किसी से मिलते नहीं है, और 3 दिन मौन के बाद ही उस प्रोग्राम में जाते हैं। तो ये बाबा का जैसे वरदान वो अपने प्रैक्टिकल जीवन में ला रहे हैं। और आजकल वो नालंदा यूनिवर्सिटी, आपको मालूम होगा, बिहार में है, उसके भी वाइस चांसलर के रूप में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे, तो उनका जो थीम है उसका नाम है माइंड मशीन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये प्रोग्राम अभी श्रीकांत भाई जी के साथ भी बात हो रही थी, तो 1-2 मास में इस प्रोग्राम की रूपरेखा भी तैयार हो जाएगी, और ये प्रोग्राम की डेट्स भी लगभग पहले नेक्स्ट 6 मास के अंदर वो प्रोग्राम होगा यहाँ पे। और वो खुद डॉक्टर विजय जी भटकर जो इंडिया में जो साइंटिस्ट है उन सबको यहाँ पे निमंत्रण देंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम जब जाते हैं और किसी को बुलाते हैं तो उसमें से परसेंटेज होता है, लेकिन एक कोई साइंटिस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी जब बोलता है या वो निमंत्रण देता है तो वो सारी साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी जो है वो इजीली उसको एक्सेप्ट करती है, वो आएंगे भी यहाँ पे। तो हम भी उनका हम आह्वान करें, विशेष हम उसके लिए सभी लोकल चैप्टर जो वो योग करे कि जो जितने भी साइंटिस्ट है वो बाबा के घर में पहुंच जाए, और उनको भी बाबा का ये ज्ञान, बाबा का आना उनको भी मिल जाए। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें थी। और एक लास्ट बात कहके मैं पूरा करता हूं, पूना में अभी दादी जानकी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम है जगदम्बा भवन, वो भी अभी 98% पूरा हो गया है, और 28 जनवरी को दादी जी खुद वहां पे आकर के उस स्थान का उद्घाटन करेंगी जो रिट्रीट सेंटर बना हुआ है। तो वहां पे भी आगे चलकर के इस पार्क की बहुत सारी गतिविधियां होने वाली है, और हर मास के मतलब फरवरी से लेकर आगे हर मास के 3rd संडे में, सैटरडे और संडे में, स्पार्क के लिए वो भवन जो है वो उपलब्ध कराया गया है। तो हम आगे चल करके जो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, TTT जो प्रोग्राम हो, कोई कॉन्फ्रेंसेस हो या कोई वर्कशॉप्स हो, तो इस प्रकार से हम वहां कर सकते हैं। तो ये भी स्पार्क के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओम शांति।
ओम शांति। अब आज की प्रेजेंटेशन का आखिरी पेशकश है आपके सामने। मैं भुवनेश्वर से आए हुए आदरणीय बीके बंसीधर भाई को निमंत्रण देता हूं, और उनकी बात पूरी होगी उसके बाद ही ये सेशन हमारा पूरा होगा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी सूचना देनी है। आप सबके लिए यहां एक फीडबैक फॉर्म बनाया गया है, नीचे जाते वक्त वो फीडबैक फॉर्म लेना है, और यहां से कैंपस छोड़ने के पहले वो फीडबैक फॉर्म यहां सबमिट करके जाना है। और दूसरी बात जो पहले भी बताई गई, बहन ने बताई, सर कॉन्फ्रेंस स्पिरिचुअलिटी एंड रिसर्चर्स की कॉन्फ्रेंस के लिए आपको अपनी तरफ से जो सजेशन देना हो, ये थीम हो, ये टॉपिक हो, इसके ऊपर चर्चा हो, उसमें लौकिक दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ आते हैं, जैसे भाई ने बात बताई, उनके लिए हमें सोचना है कि उनको हम क्या परोसे। तो ये दोनों काम हमें करना है। आदरणीय बंशीधर भाई,
गुड आफ्टरनून। आज आपको योग कैसे हम डीप जा सकते हैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। हम सब योग करते हैं, कितना डीप जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं योग से हमारा 63 जन्म का विकर्म विनाश होना है। तो कितना समय में, थोड़े समय में कितना मेहनत करना चाहिए, ये आप भी समझ सकते हैं। इसलिए जो हम योग में कहते हैं ना, बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। लेकिन जो फाउंडेशन है योग के, गहरे के 7-8 पॉइंट है, लेकिन हम टाइम शॉर्ट है इसलिए एक दो पॉइंट बताएंगे और लास्ट में दिखाएंगे। तो इसलिए तो हमारा टॉपिक है एक्सपीरियंसिंग डीपनेस इन राजयोग, कैसे हम गंभीर अनुभव करें निष्ठ। जैसे हम मानते हैं उपनिषद में है ना, ओम कहते हैं ना, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यह अर्थ है। ये ओम माने भगवान को कहते हैं, परमात्मा को कहते, ईश्वर को कहते हैं। उपनिषद में ये बताया गया है ये भगवान ही हमको कैसे हम अंधार से आलोक को ले सकते हैं। तो इसलिए ये ज्ञान इस समय परमात्मा ने कर दिया। ये सहज राज्य के, लेकिन परमात्मा जो शिक्षा देते हैं ये सहज है। लेकिन बाबा आप तो 9 सितंबर में आप मुरली अव्यक्त मुरली में आप सुना होगा, ये पढ़ाई मजूर कर पढ़ना है, रात दिन लाग कर पढ़ना है, खाना न खाए कर दिन पढ़ना है। आप देखिए सितंबर 9 जो अव्यक्त मुरली आया था, ये पढ़ाई है राजयुग का। तो राजयुग के लिए हम कितना मेहनत करते हैं ये मालूम पड़ता है। जैसे दीदी दादी ने 14 वर्ष तपस्या किया, हम कितना तपस्या कर रहे हैं डीप अनुभव करने के, क्योंकि थोड़े समय में हमारा विक्रम विनाश करना है और हम भविष्य को जाना चाहते हैं। राजयुग के बारे में आप तो जानते हैं, वो तीन है। एक तो जैसे कहते हैं बाबा कहते हैं लगन में मगन होना, और दूसरा है याद की यात्रा। जो कोई ने नहीं बताया योग को यात्रा, लेकिन परमात्मा ने बताया योग की यात्रा। ये लॉन्ग यात्रा बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले बताया, लॉन्ग यात्रा कैसे ना, आत्मा परमधाम में जाना है। विकर्म विनाश करने के लिए आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में परमधाम में बाप के पास बैठने से विकर्म विनाश होगा। ओम शांति।